आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। मरकज ने माली साल 2025-26 के बजट ऐलानात के निफाज के लिए 17 लाख करोड़ रुपए के 3 साला सरकारी निजी शराकतदारी के प्रोजेक्ट तरतीब दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आलूगी के सभी बड़े वसाइल की शनाख्त की खातिर हवा के मेयार के बंदोबस्त के कमीशन को 2 हफ्ते का वक्त दिया है और तवील मुद्दती शोबा जाती एक्शन प्लान तजवीज किया है। नेशनल मेडिकल कमीशन की जानिब से MBBS इजाजतनामा वापस लिए जाने के साथ ही श्री माता वैष्णव देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तालीमी साल 2025-26 में दाखिला ले चुके तलबा को जम्मू कश्मीर के दीगर मेडिकल कॉलेजों में मुंतकिल करेगा। वेनेजुएला के सदर मदुरो को गिरफ्तार करने के अमेरिका के खसूसी ऑपरेशन के दौरान क्यूबा के 32 और वेनेजुएला के 24 शहरी हलाक हो गए हैं। और फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग सभी 14 क्लबों के साथ 14 फरवरी को शुरू होगी। अब खबरें तफसील से। मरकजी बजट 2025-26 में किए गए ऐलान के निफाज के पेश नज़र इक्तसादी उमूर के महकमे ने 3 साला सरकारी निजी शराकतदारी की प्रोजेक्ट पाइपलाइन तैयार की है। वजारत खजाना ने कहा कि प्रोजेक्ट पाइपलाइन 17 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की कुल लागत के एक मुश्तरक प्रोजेक्ट के साथ बुनियादी ढांचे की मरकजी वजारतों, रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 852 प्रोजेक्टों पर मुश्तमिल है। उसने मजीद कहा कि पाइपलाइन मुमकिना सरकारी निजी शराकतदारी के प्रोजेक्टों के बारे में इब्तदाई आगाही फराहम करती है, जिसे सरमायाकारों, डेवलपर्स और दीगर शराकतदारों को ज्यादा बाखबर मनसूबाबंदी और सरमायाकारी के फैसले करने में मदद मिलती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त निफाज प्रगति के लिए अहम प्लेटफॉर्म ने अपनी 50वीं मीटिंग के कामयाब इनेकाद के साथ एक जबरदस्त और गैर मामूली संग मील उबूर किया है। साल 2015 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से प्रगति को शुरू किए जाने के बाद से प्रगति ने वजीर आजम के बराह रास्त जायजे के जरिए बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों और अवामी शिकायत के इजाले के हल और बरवक्त निगरानी के जरिए हुक्मरानी की काया पलट की है। इस प्लेटफॉर्म ने इमदाद बहामी पर मबनी विफाकियत को मिसाली बनाया है। मरकज, रियासतों और मरकजी वजारतों को एक वाहिद डिजिटल इंटरफेस को यकजा किया है। गुज़िश्ता एक दहाई में प्रगति के सबब फैसले करने में तेजी लाने, कलीदी बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में ताखीर के मसलों को हल करने में मदद मिली है और जवाबदही के एक मजबूत कल्चर पैदा हुआ है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हिमाचल प्रदेश में पर्वति दोयम के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर एक नजर डालते हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
पार्वती दोयम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नदी के बहाव का एक हाइड्रो पावर स्टेशन है, जिसे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती दरिया पर NHPC लिमिटेड के जरिए तैयार किया गया है। ये भारत का सबसे पेचीदा तकनीकी और हिकमत अमली के एतबार से अहम हाइड्रो पावर तरक्याती प्रोजेक्ट है। पार्वती दोयम इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि सालाना लगभग 3,074 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की जा सके। नॉर्दर्न ग्रिड के लिए काबिले भरोसा, काबिले तजदीद बिजली सप्लाई की जा सके और इससे कई रियासतों को फायदा हो। इन रियासतों में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, छत्तीसगढ़ और मरकज के जेर इंतजाम इलाका चंडीगढ़ शामिल है। इंतहाई कमजोर हिमालयी जोग्राफियाई सूरत हाल की वजह से जेर जमीन सुरंग के काम में ताखिर हुई, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की मजमूई तामीर में काफी रखना पड़ा। 17 फरवरी 2016 को प्रगति मैकेनिज्म के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से इस मामले का जायजा लिया गया। इसके बाद वजीर आजम ने हिमाचल प्रदेश सरकार को हिदायत दी कि वो तरजीही बुनियाद पर तहवील में ली गई जमीन का मुकम्मल इस्तेमाल करें। उन्होंने बिजली की वजारत और NHPC को यह भी हिदायत दी कि वो तामीर के काम में खातिरखा तेजी लाएं। पिछले साल 16 अप्रैल को चौथे यूनिट्स के शुरू होने के बाद से बिजली पैदा करने वाले 4 में से 3 यूनिट कमर्शियल तौर पर चालू हुए हैं। आकाशवाणी खबरों के लिए सुपर्णा साइकी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
सुप्रीम कोर्ट ने हवा के मेयार के बंदोबस्त के कमीशन से कहा है कि वो 2 हफ्तों के अंदर आलूदगी के सभी बड़े वसाइल की निशानदेही करे और तवील मुद्दती शोबा जाती एक्शन प्लान तजवीज करे ताकि मरहलेवार तरीके से उन्हें हल किया जा सके। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की एक बेंच ने कहा कि हवा के मेयार के बंदोबस्त के कमीशन को सभी माहिरीन को यकजा करना चाहिए ताकि वो गौर व खौज के बाद तवील मुद्दती हल निकाल सकें जिसे रोजगार सनत और आवाम को नुकसान पहुंचाए बगैर मरहलेवार तरीके से नाफिज किया जा सके। उसने कहा है कि आलूगी पर काबू पाने में इस वजह से नाकामी हुई क्योंकि अदालत ने कई माहिरीन के ख्यालात पर गौर किया जिन्होंने एक वाजे और एक मरबूत मंसूबा पेश करने की बजाय मुख्तलिफ हिदायात को उजागर किया। इस मकसद के लिए हवा के मेयार के कमीशन को 2 माह की मुद्दत की एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्ट की दरख्वास्त पर बेंच की जानिब से शदीद रद्दअमल सामने आया लेकिन अदालत ने हवा के मेयार के बंदोबस्त के कमीशन को मजीद 2 हफ्ते का वक्त दिया है और उनसे इस महीने की 21 तारीख तक एक लाए अमल मांगा है। जम्मू कश्मीर के रियासी में वाक़े श्री माता वैष्णव देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस का तालीमी साल 2025-26 का 50 MBBS सीटों का इजाज़तनामा LOP मनसूख कर दिया गया है। कौमी मेडिकल कमीशन NMC के मेडिकल जांच और रेटिंग से मुतालिक बोर्ड MARB ने तय करदा कम अज़ कम पैमानों की अदम तकमील के बायस मेडिकल कॉलेज को दिया गया इजाज़तनामा वापस ले लिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
गुज़िश्ता रोज़ MARB की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि तालीमी साल 2025-26 की काउंसलिंग के दौरान कॉलेज में दाखिले ले चुके सभी तलबा को जम्मू कश्मीर के दीगर मेडिकल कॉलेज में जम कर दिया जाएगा। इन तलबा का इंजमाम मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की इंतज़ामिया के मजाज अथॉरिटी की जानिब से सुपर न्यूमरेरी सीटों के तौर पर किया जाएगा। इस हुक्मनामे के बारे में जम्मू कश्मीर महकमा सेहत तिब्बी तालीम के डायरेक्टर SMVD यूनिवर्सिटी हुकाम और सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत को ज़रूरी कार्रवाई और तामीर के लिए आगाह कर दिया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक तय करदा कम अज़ कम पैमानों की अदम तकमील के मामले का अचानक हुए जायजे के दौरान इंकिशाफ हुआ जिनमें असातिज़ा की तादाद तिब्बी आलात और बुनियादी ढांचे से मुतालिक मुजव्वज़ा मेडिकल कॉलेज में संगीन कमियाँ पाई गईं। कौमी मेडिकल कमीशन का फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
देही तरक्की और पंचायत राज के कौमी इंस्टीट्यूट NIRDPR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जी नरेंद्र कुमार ने कहा है कि विकसित भारत जी रामजी कानून के तहत कम अज कम उजरत का मुकम्मल तहफ्फुज़ किया जाएगा। हैदराबाद में एक रोजा वार्तालाप में मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी कानून विकसित भारत 2047 के कौमी विजन को हासिल करने की जानिब एक वाजह रोड मैप फराहम करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्राम पंचायतों को कौमी तरक्की की तरजीहात से हम आहंग करते हुए विकसित भारत जी रामजी कानून रोजगार पैदा करने और पायदार और शमूलियाती देही तरक्की को फरोग देने में अहम किरदार अदा करेगा। महाराष्ट्र हुकूमत ने एक मुतालाती ग्रुप तश्कील दिया है जो इस साल भारतीय मुसल्ह अफवाज में 4 साल खिदमात मुकम्मल करने वाले अग्निवीरों के लिए बाज़ाबादकारी इकदाम तजवीज़ करेगा। ये ग्रुप 3 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। कर्नल दीपक ठोंगी की क़्यादत वाला पैनल सरकारी नीम सरकारी और प्राइवेट शोबे में मौके तलाश करेगा और साथ ही इन अग्निवीरों के खुद रोजगार के लिए तरबियत और माली मदद के इम्कानात ढूंढेगा। इस साल अक्टूबर नवंबर में 2839 अग्निवीरों की पहली बैच अपनी 4 साल खिदमात की मुद्दत मुकम्मल करेगी। इनमें से 25% अग्निवीरों को मुसल्ह अफवाज की मुस्तकिल मुलाजिमत में शामिल कर लिया जाएगा जबकि बाकी 75% को सरकारी और नीम सरकारी खिदमात जैसे पुलिस महकमे जंगलात फायर ब्रिगेड या रियासती रिजर्व पुलिस फोर्स में जम करना होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और लग्जमबर्ग के ताल्लुकात में काफी पेशरफ्त हुई है और भारत लग्जमबर्ग को एक बहुत ही अहम साझेदार के तौर पर देखता है। लग्जमबर्ग के वजीर खारजा जेवियर बैटल के साथ अपनी मीटिंग के दौरान एक बयान में डॉक्टर जयशंकर ने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान गहरे ताल्लुकात की वकालत करने के लिए लग्जमबर्ग का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर जयशंकर ने लग्जमबर्ग के ग्रैंड ड्यूक गुलेम से भी मुलाकात की और उन्हें सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू की मुबारकबाद का पैगाम पेश किया। वजीर खारजा ने कहा कि वो भारत के लिए उनके मुस्बत जज्बात और बाहमी शराकतदारी को वसत देने पर उनकी कदर करते हैं। इससे पहले वजीर खारजा ने लग्जमबर्ग के वजीर आजम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने माली खिदमात सरमायाकारी टेक्नोलॉजी और इख्तरा में भारत और लग्जमबर्ग के दरमियान बढ़ते हुए तवाउन पर तबादला ख्याल किया। जनाब जयशंकर ने लग्जमबर्ग के वजीर आजम का इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा किया कि वो भारत और یورپی یونین کے درمیان مضبوط تعلقات کی پرزور حمایت کرتے ہیں۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل کل سے برسلز کا دو روزہ دورہ کریں گے۔ کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا کہ اس دورے سے بھارت اور برسلز کے درمیان سفارتی اور تکنیکی سرگرمیوں میں مزید تیزی آئے گی، جو بھارت یورپی یونین کے درمیان آزادانہ تجارتی سمجھوتے ایف ٹی اے کو شامل کرنے کی جانب ایک فیصلہ کن پیش رفت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اپنے دورے کے دوران جناب گوئل تجارت اور اقتصادی سیکیورٹی میرس کے لیے یورپی یونین کے کمیشن کے ساتھ اعلیٰ سطحی مذاکرات کریں گے۔ امریکی فوج کی جانب سے ہفتے کے روز کیے گئے فوجی آپریشن کے دوران وینیزویلا کے کم از کم 24 سیکیورٹی افسران ہلاک ہو گئے۔ وینیزویلا کی فوج کے اعلان کے مطابق ان اموات کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 56 ہو گئی ہے۔ وینیزویلا کے اٹارنی جنرل طارق ولیم صاحب نے کہا کہ درجنوں افسران اور شہری مارے گئے ہیں اور استغاثہ ان ہلاکتوں کی جانچ کرے گا۔ انہوں نے ان اموات کو جنگی جرائم قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وینیزویلا کی عبوری حکومت امریکہ کو 30 ملین سے 50 ملین بیرل کے درمیان پابندی عائد ہونے والا تیل منتقل کرے گی۔ انہوں نے اس منصوبے کو دونوں ملکوں کے لیے سود مند قرار دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کو حاصل کرنے کے لیے فوجی کارروائی سمیت مختلف متبادل پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ٹرمپ نے دوبارہ کہا ہے کہ امریکہ قومی سلامتی کی خاطر ڈنمارک کے خود مختار علاقے گرین لینڈ کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس دوران ڈنمارک کے وزیر اعظم میٹ فریڈرکسن نے انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے کوئی بھی حملہ شمالی بحیر اوقیانوس معاہدے نیٹو کا خاتمہ ثابت ہوگا۔ وہیں یورپی اتحادیوں نے نیٹو رکن ڈنمارک کی حمایت کی ہے۔ کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے اعلان کیا ہے کہ انڈین سپر لیگ ISL 14 فروری سے شروع ہوگی۔ اس طرح 6 مہینے سے جاری بحران ختم ہو گیا ہے، جس سے بھارتی فٹ بال میں جمود تاری ہو گیا تھا۔
ISL لیگ 14 فروری سیٹرڈے سے سٹارٹ ہوگی اور سب بھی ہمارے کلب اس میں پارٹیسپیشن کرے گی، اور دیش میں فٹ بال کے ساتھ جڑے ہوئے سبھی کے لیے خوشی کا سماچار ہے۔ دیش میں فٹ بال آگے بڑھے، لیگ کے دوارا ہمیں دیش کو اچھا پلیئر ملے، اس ادیش کے ساتھ اس لیگ کرائی جائے گی۔
انڈین سپر لیگ میں موہن بگان اور ایسٹ بنگال سمیت سبھی 14 کلب شرکت کریں گے، جس کی آل انڈیا فٹ بال فیڈریشن کی جانب سے تجویز کردہ مالی ماڈل کی مخالفت کی گئی تھی۔ جناب مانڈویا نے اعلان ایک مشترکہ میٹنگ کے بعد کیا، جس میں حکومت، آل انڈیا فٹ بال فیڈریشن اور کلب کے نمائندوں نے شرکت کی۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان۔
شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے اتر پردیش میں SIR کے بعد ووٹر فہرستوں کا مسودہ جاری کیے جانے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، UP میں 2,89,00,000 ووٹروں کے نام شامل نہیں کیے گئے، ریاست میں اب کل ووٹروں کی تعداد 12,56,00,000 رہ گئی۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے ایک اہم خبر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، وشاکھ ریفائنری میں RUF کی ابتدا، خود انحصاری کی طرف ایک بڑا قدم، وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان۔ روزنامہ پرتاب نے ایرانی چیف جسٹس کے بیان کو شہ سرخی بنایا ہے، ایران کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی نے مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ اسی اخبار نے ایک اور اہم خبر شائع کیا ہے، ہندوستان کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین جیند اور سونی پت کے درمیان چلے گی، اس کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔
اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکز نے مالی سال 2025-26 کے بجٹ اعلانات کے نفاذ کے لیے 17,00,000 کروڑ روپے کے 3 سالہ سرکاری نجی شراکت داری کے پروجیکٹ ترتیب دیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے دلی NCR میں آلودگی کے سبھی بڑے وسائل کی شناخت کی خاطر ہوا کے معیار کے بندوبست کے کمیشن کو 2 ہفتے کا وقت دیا ہے، اور طویل مدتی شعبہ جاتی ایکشن پلان تجویز کیا ہے۔ نیشنل میڈیکل کمیشن کی جانب سے MBBS اجازت نامہ واپس لیے جانے کے ساتھ ہی شری ماتا ویشنو دیوی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس تعلیمی سال 2025-26 میں داخلہ لے چکے طلبہ کو جموں کشمیر کے دیگر میڈیکل کالجوں میں منتقل کرے گا۔ وینیزویلا کے صدر نیکولس مدورو کو گرفتار کرنے کے لیے امریکہ کے خصوصی آپریشن کے دوران کیوبا کے 32 اور وینیزویلا کے 24 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور فٹ بال میں انڈین سپر لیگ سبھی 14 کلبوں کے ساتھ 14 فروری کو شروع ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔